તારીખ 27/12/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા સોનગઢમાં થયેલ તત્વ ચર્ચા સળંગ નંબર 35.
બીજો પેરેગ્રાફ, પેલો પેરેગ્રાફ ચાલે. કલ્યાણને વિશે પ્રતિબંધરૂપ જે જે કારણો છે તે જીવે વારંવાર વિચારવા ઘટે છે. તે કારણોને વારંવાર વિચારી મટાડવા ઘટે છે અને એ માર્ગને અનુસર્યા વિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ ઘટતી નથી. આટલી એક વાત કરી છે. કલ્યાણને વિશે પ્રતિબંધરૂપ એટલે આત્મકલ્યાણને બાધક હોય તેવા કારણો જે કોઈ હોય તેને ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ એમ કહે છે. એ કારણો ખરેખર બાહ્ય કારણો નથી, પણ પોતાના પરિણામમાં થતા, પોતાના કલ્યાણ વિરુદ્ધ થતા જે પરિણામ, એટલે પોતાના અકલ્યાણરૂપ પરિણામ, પોતાના સુખને હાનિ કરતા પરિણામ, પોતાની અશાંતિને ઉત્પન્ન કરતા પરિણામ, એવા જે કોઈ પરિણામો છે તે કારણો છે જે આત્મકલ્યાણની વિરુદ્ધ જાય છે. તે કારણોનો વારંવાર વિચાર કરવો જોઈએ અને તે કારણો મટાડવાના દ્રષ્ટિકોણથી તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. વિચાર કરવો જોઈએ એટલે એક ખાસ દ્રષ્ટિકોણ છે વિચારનો, એ કારણો કેવી રીતે મટે એ દ્રષ્ટિકોણથી એનો વિચાર કરવો જોઈએ. એ માર્ગને એટલે એ પ્રકારે માર્ગને અનુસર્યા વિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ ઘટતી નથી. આગળ જે એમણે સત્સંગની વાત લીધી એને નામે સીધું અનુસંધાન છે કે સત્સંગ એટલે શું. કોઈ પુસ્તક વાંચી જવું એ સત્સંગ નથી, કોઈ વાત સાંભળી લેવી એટલે સત્સંગ છે એમ નથી. ખરેખર સત્સંગનો પ્રારંભ એ રીતે છે કે પોતાના અશાંતિના કારણરૂપ જે પોતાના જ પરિણામ, એનો વારંવાર વિચાર કરવો અને એ દ્રષ્ટિકોણથી વિચાર કરવો કે એ કેવી રીતે હું ટાળી શકું, કેવી રીતે મટાડી શકું. ગુજરાતીમાં આપ તકલીફ નહીં. ક્યા કહેતે હૈ કે અપને જો અશાંતિ કે કારણ રૂપ જીતને ભી પરિણામ હૈ વો મિટાને કે દ્રષ્ટિકોણ સે અંદર મેં ભીતર મેં વિચાર કરના હૈ ઇસકા, વો કૈસે મિટે. જૈસે હમારે બાહ્ય કાર્ય મેં કોઈ ઓબ્સ્ટેકલ્સ આતે હૈ, પ્રતિબંધ આતે હૈ, તો ઉસકો મિટાને કે લિયે હમ વિચાર કરતે હૈ. ઠીક વૈસે હી યે વિષય અંતરંગ કા હૈ, બાહ્ય કાર્ય બાહ્ય પ્રસંગો કા નહીં હૈ. તો વિસ્તાર સે ઇસ પત્ર મે કૃપાળુદેવ ને ઇસ પર માર્ગદર્શન દિયા હૈ. બહુ અચ્છે ડાયરેક્ટિવ હૈ ઉનકે જો હૈ, એકદમ પદ્ધતિ સર બાત કિયા હૈ. મૌન વિક્ષેપ ઓર અજ્ઞાન એ અનાદિ કે જીવ કે તીન દોષ હૈ. ક્યા કારણ હૈ આત્મકલ્યાણ કો રોકને વાલે પ્રતિબંધક કારણ કોણ સે હૈ કે મૌલ વિક્ષેપ ઓર અજ્ઞાન. વિક્ષેપ મેને ડિસ્ટર્બન્સ, શાંતિ કો ડિસ્ટર્બ કરને વાલા પરિણામ કો વિક્ષેપ કહેતે હૈ. ઓર ઉસમે જો મલિનતા હૈ ભાવો કે કષાયો કી, ઉસકો મૌલ કહેતે હૈ. ઓર અજ્ઞાન મેને અપના હિત અહિત કા ખ્યાલ નહીં પડના, સમજ નહીં રહેની, શુદ્ધ નહીં રહેની, उस प्रकार की बुद्धि का उपयोग नहीं होना, उसको अज्ञान कहते हैं। ये तीन प्रकार के जो परिणाम हैं, वो अपने आत्म कल्याण को रोकने वाला है, आत्म कल्याण में बाधक है। ये तीन प्रकार के परिणाम, ये अनादि से जीव के तीन प्रकार के दोष, सभी जीव को अनादि से ये तीन दोष चला रहा है। मैंने कोई नया शुरू किया है ऐसी बात नहीं है, ये चालू ही है अनादि से, वर्तमान में भी है। अब देखिए, शास्त्र पद्धति से इसमें दो भेद हो जाता है, तो प्रकार दोष के तीन है लेकिन इसके दो भेद हो जाते हैं, एक दर्शन मोह के और दो चारित्र मोह के। एक भेद में ले तो मोह के ही तीन भेद हैं, लेकिन दर्शन मोह के भी है और चारित्र मोह के भी है। जो मल है वो दर्शन मोह का मुख्य दोष है, और विक्षेप है वो चारित्र मोह का मुख्य दोष है, और अज्ञान तो ज्ञान के विपरीत है। वह ज्ञान की संतति बलवान होने से यह अज्ञान की संतति बलवान होने से उसको रोध होने के लिए यानी मिटाने के लिए, और ज्ञानी पुरुष के वचनों का यथायोग्य विचार होने के लिए मल और विक्षेप मिटाना चाहिए। क्या सूचना करते हैं कि अज्ञान है उससे मल और विक्षेप दोनों पैदा हुए हैं, अज्ञान ये दोनों का जनक है, उत्पन्न करने वाला है। सभी जितनी भी गड़बड़ी हैं दोषों की, जितने प्रकार के दोष हैं, इसका मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान मैंने अविवेक, अविवेक मैंने अपना हित कहाँ है, अपना नुकसान कहाँ है, लाभ कहाँ है, नुकसान कहाँ है, शांति अशांति के दृष्टिकोण से उसकी समझ नहीं होनी, उसका नाम नुकसान है। मैंने खुद ही अपने को नुकसान कर देता है, खुद ही अपने को अशांति में धकेल देता है, यह अज्ञान के कारण से होता है, उसी कारण अज्ञान है। तो उसका साधन कौन सा है कि ज्ञानी पुरुषों के वचन की प्राप्ति होने पर, ज्ञानी पुरुष मैंने आत्म शांति जिसने प्राप्त कर ली, का इलाज मार्ग उपाय जिसने जाना है, ऐसा अनुभवी आत्मा को, अनुभवी पुरुष को हम आत्मज्ञानी कहते हैं। उनके वचन की प्राप्ति हुई, इनके वचन में वो बात है कि इस तरह आत्म शांति मिल सकती है, ये इनके वचन का मूल विषय है। बात कितनी भी लंबी छोड़ी हो सकती है, कितनी भी लंबी छोड़ी बात हो, उसका केंद्र स्थान ज्ञानी पुरुष अपने वचनों को एक ही जगह सेंट्रलाइज कर लेता है कि आत्म शांति कैसे होती है और अशांति का नाश कैसे होता है, और मतलब वही है जीव को। संसार की भी कुछ भी प्रवृत्ति करके या प्रवृत्ति नहीं करके, निवृत्ति लेकर के जीव को शांति चाहिए। प्रवृत्ति करने वालों को भी सुख शांति चाहिए, प्रवृत्ति से निवृत्ति लेने वाले को भी सुख शांति ही चाहिए। वास्तव में इसका उपाय और मार्ग कौन है, ये अपने को वैज्ञानिक तौर से, अंधश्रद्धा से नहीं लेकिन वैज्ञानिक तौर से, साइंटिफिक बेस पर अपने को समझना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए, ये अपने शांति का कारण है। अंधश्रद्धा में कुछ सोच समझ करके स्वीकार नहीं करते, वैसे ही स्वीकार कर लिया, मैंने कह, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, ब्लाइंड फेथ जिसको अपन कहते हैं, अंधश्रद्धा। कोई जिसके पीछे कोई कारण कार्य का या वस्तु विज्ञान का कोई प्रकार नहीं है, बिना न्याय का, न्याय का लॉजिक का कोई बेस नहीं है जिसका, वस्तु के स्वरूप का, वस्तु के विज्ञान का जिसके पीछे कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही मान लिया, उसको कहते हैं अंधश्रद्धा। लेकिन गुरु कैसे हैं, कहा तो ठीक कहा, अभी तो बुद्धिमानी का जमाना है, ये जो है अंधश्रद्धा का युग में है। अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपनी समझ में बात नहीं आएगी तो स्वीकार नहीं करेंगे, कहा सो मान लिया वो बात नहीं है, अपने माँ बाप की भी नहीं माने, गुरु की नहीं माने, किसी की नहीं माने, तो हमें हमारी समझ में बात देखनी चाहिए, अगर बात समझ में आती है तो स्वीकार होती है, समझ में नहीं आती तो स्वीकार करने में कोई तैयार नहीं है आजकल तो, बुद्धिवाद का जमाना है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो तो बिना बुद्धि कोई साइंस समझ सकता है क्या? अंधश्रद्धा में बुद्धि की जरूरत नहीं, विज्ञान को समझने के लिए तो बुद्धि चाहिए, अच्छी तरह चाहिए।
विज्ञान है
बिल्कुल, आत्मा एक पदार्थ है जिसका अपना गुण धर्म है, एलिमेंट है, एक सत्व है, एक सब्सटेंस है, अपने प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर्स हैं इनके, इनका भी गुण धर्म है, और उसी के अनुसार वो कार्य करता है, अपना कोई इच्छा दूसरे की इच्छा, अपनी इच्छा अपनी कल्पना दूसरे की कल्पना, ऐसा काम नहीं होता, वैज्ञानिक पदार्थ है, अपना वैज्ञानिक, उसको इस तरह समझना चाहिए। ज्ञानी के विपरीत वचन पहले तो होते ही नहीं,
जैसे न्याय में लिखा कि परिणाम मात्र में दूसरे क्या लिखते हैं, परिणामों को संभालना, परिणाम संभालना वो लिखते हैं, परिणाम मात्र में नहीं, तो विपरीत का मन
ऐसे है कि आप भी व्यापारी है, अच्छा बड़े व्यापारी हैं, सराफा चांदी ना मोटा व्यापारी से आगरा माने इंदौर ना पीछे रिफाइनरी, चांदनी रिफाइनरी काम करता रहा आगरा मा, अपने गुरु बहन करी छो, 1 करोड़ ना मोटा ट्रस्ट करी छो, आप व्यापार के साथ व्यापार करते हो तो विरुद्ध कार्य क्यों करते हो, अपना घर के साथ बहुत बढ़िया अच्छा संबंध रखते हो और उसको ही लूटते हो, क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक के पास से नफा कर लेना, कमाई अपनी ज्यादा से ज्यादा करना, किसके पास से करोगे, मेरी कमाई अगले का नुकसान है कि नहीं है, क्या है, मेरा नफा वो आपका नुकसान है, और मैं आपसे प्रेम से बात करता हूं और आपका जेब में से पैसा ले लेता हूं, वृद्ध कार्य करते हो या नहीं करते हो, प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये एडजस्टमेंट जरूरी है, क्या यही कारण है कि आत्मा में मूल स्वभाव से अशुद्धि नहीं है, शुद्धि है, और परिणाम में अशुद्धि है, मल है, मलिनता है, दुख है, वस्तु में सुख स्वभाव है और परिणाम में दुख है, दोनों विरुद्ध चित्त तो अपने मूल पदार्थ में है, तो दोनों को ठीक करने के लिए वचन भी ऐसे ही आएंगे जो विरुद्ध दिखेंगे, है ही नहीं, प्रयोजन एक ही है इसमें, दोनों बात में एक ही प्रयोजन निकलता है, प्रयोजन की दृष्टि से देखोगे तो विरुद्ध दिखने वाले वचन अविरुद्ध दिखेंगे, विरुद्ध नहीं दिखेंगे, लेकिन आपका प्रश्न है तो आउट ऑफ सब्जेक्ट है, विषयांतर बताए, इसलिए इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, संक्षेप में आपको उत्तर दिया। अब क्या कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के वचन की प्राप्ति होने पर और उसके पर यथा योग्य विचार होने पर, क्या कहा? मान लेने पर नहीं कहा, ज्ञानी पुरुष का वचन मिला और उसके पर यथायोग्य विचार भी किया। ऐसा कि विचार नहीं किया मान लिया सो बात नहीं है, वो तो खुद ही कहते हैं कि यथायोग्य विचार करना। उसके पर यथायोग्य विचार करने से मैंने पर्याप्त मात्रा में उसका विचार करना चाहिए, अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो? कि ज्ञानी पुरुष का वचन को यथार्थ रूप से विचार में लेने से अपना हित अहित के विषय में सूझ आती है कि मेरा लाभ कहाँ है, मेरी शांति कहाँ है, मेरी अशांति कैसे होती है। इस विषय के ज्ञानी पुरुष एक्सपर्ट है, जिसने अपने अनादि अशांति को मिटाया और आत्म शांति के मार्ग पर जो आरूढ़ हो गए, वो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं। तो उन्होंने जो बात की उनको अपने को भी अच्छी तरह विचार करने से, यथायोग्य रूप से विचार करने से अपने को भी अपने शांति अशांति के विषय में बराबर अपनी सूझ, स्वतंत्र सूझ अपने को मिलेगी। ये बात हमारी समझ में आएगी कि मेरे शांति का ये कारण है या मेरी अशांति का कारण है, मुझे ये करना चाहिए मुझे ये नहीं करना चाहिए, या मुझे कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, कितना एडजस्टमेंट करना कितना नहीं करना, ये सब बात समझ में आती है। अच्छा, उस अज्ञान की संतति बलवान होने से, मैंने अज्ञान अनादि का जो है वो बलवान अज्ञान है, मामूली अज्ञान नहीं है, बहुत गाढ़ प्रगाढ़ जीव में अज्ञान है। उनको मिटाने के लिए और ज्ञानी पुरुष के वचनों को यथायोग्य विचार हो सके, विचार शक्ति भी, थिंकिंग पावर जिसको कहते हैं, वो ठीक हो सके, इसके लिए मोल और विक्षेप को मिटाना चाहिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल साइड है कि हम किसी भी डिसीजन लेते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो हम उतावली में नहीं ले सकते। कोई मैच्योर्ड आदमी है वो कहेगा डोंट बी हेस्टी, थोड़ा शांति से, उतावल नहीं कर रहा, हेस्टी नहीं हो जाना, शांति से, शांत चित्त से थोड़ा सभी पहलुओं का, चारों पहलुओं का, लाभ नुकसान का पूरा ख्याल करके फिर कोई यथार्थ निर्णय करो, पक्का निर्णय करो, इसके पहले निर्णय नहीं करना। क्यों? कि निर्णय पर सभी आगे की कार्यवाही आधारित होती है, उस निर्णय को अनुसरण करके ही सब कार्यवाही करनी पड़ती है। इसलिए निर्णय का स्टेज बहुत महत्व का है, हर काम में निर्णय का स्टेज बहुत महत्व का है। ये बड़े बड़े देश का संचालन चलता है, ये इंडस्ट्रियों का संचालन चलता है, क्या है इसमें डिसीजन करने वाले कोई काम थोड़े करते हैं, ये तो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके कॉन्फ्रेंस करके डिसीजन लेते, काम करने वाले काम करते, क्या होता है, किस काम का महत्व है या डिसीजन का महत्व है? डिसीजन का, एक गलत निर्णय ले लिया चेयरमैन ने, एक गलत निर्णय ले लिया सारी बैंक खत्म हो जाएगी, दिवाला निकल जाएगा पूरी बैंक का। ये डिसीजन का विषय महत्व का है, ये हमारे अनुभव का जब विषय है, तो इस लाइन में भी आत्म शांति के प्राप्त करने के उपाय में भी निर्णय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिका में निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय लेने के पहले कार्यवाही का सवाल उत्पन्न ही नहीं होता कि कार्य कैसे करना कैसे नहीं करना, अस्ति नास्ति दोनों बात नहीं रहती, पहली बात निर्णय की है। और ज्ञानियों ने पहले यही बात कहा कि आप निर्णय करो, पहले यथार्थ निर्णय करो, जैसी वस्तु है वैसा निर्णय करना है। यथार्थ निर्णय मतलब क्या है, कोई कल्पना नहीं करनी है, पदार्थ जैसा है ऐसा उसका निर्णय करना है, मेरा स्वरूप मूल में कैसा है इसका निर्णय करना है, बस ये निर्णय पर आगे का मार्ग आधारित है। निर्णय को फॉलोअप करना है बस, बाकी का काम तो उतना ही है। सबसे पहले ये बात है, इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के वचनों का यथार्थ योग विचार करने के लिए मल मैंने मलिनता, मलिनता से क्या होता है कि ज्ञान में जो निर्मलता से अपना हित का विचार होता है वो मलिनता में नहीं होता है। जिसकी बुद्धि मलिन होती है उसको सभी उस मलिनता बढ़ाने का ही विचार आता रहता है। तो मल और विक्षेप, विक्षेप मैंने डिस्टर्बेंसेस, चंचलता, परिणाम की चंचलता नहीं होनी, शांति रहनी, और परिणाम में मलिनता नहीं होनी, ये दोनों मिटाना चाहिए। ये अज्ञान और ये दोनों को साथ में अरस परस में संबंध है, रिलेशन है, इसलिए अज्ञान को ठीक करने के लिए उनको मिटाना चाहिए, उनको मिटाने के लिए ज्ञान को ठीक करना चाहिए, दोनों आपस में रिलेटेड है। वैराग्य में ये विक्षेप और मल है वो घटता है, वो दूसरा शब्द से वो बात है, वो दूसरा शब्द से बात है। क्या है कि सामने जो मुमुक्षु जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी जो भूमिका है उसी अनुसार भाषा का प्रयोग लेते हैं, वो शास्त्र परिभाषा बहुत कम प्रयोग करते हैं, चालू भाषा में बात करते हैं, लिखते हैं पत्र। अब इनका साधन कौन है, मल और विक्षेप को मिटाने का साधन कौन है, कि जिसलिए हम हमारी विचार शक्ति तंदुरुस्त होवे या मैच्योर्ड होवे, या हम ठीक निर्णय ले सकें, गलत निर्णय नहीं ले। सरलपणु, सरलपणा सबसे पहला आप शब्द ही लिया, देखो कल भी थोड़ी बात चली थी, सरलपणा इस मार्ग में मुद्दे की बात है, मुख्य बात है, मेन बात है सरलपणा की। संयोग वियोग तो होने वाला सब होता है, बाहर में जो भी परिस्थिति होने वाली होती है अपना विचार के अनुकूल कोई हो जावे ये वस्तु स्थिति नहीं है, लेकिन अपना सरलपना से अपने को लाभ है, अपना असरलपना से अपने को नुकसान है, ये बात समझ में अच्छी तरह आनी चाहिए। सरलपना, क्षमा, अपना दोष का अवलोकन करना, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, ये वगैरह मल मिटने के साधन है। परिणाम में मलिनता मिटने के कौन कौन से साधन रूप परिणाम है, परिणाम के साधन परिणाम ही है, कोई बाह्य बात नहीं लिया, तो क्या करना है उसको परिणाम में सरल बना रखना है। क्षमा मैंने उदारता रखनी है कि कोई कैसा भी बर्ताव करे अपनी ओर, हमें उदारता से उसको देखना है, हमें उसको संकुचित दृष्टि से नहीं देखना है। और अपने दोष का अवलोकन करना, ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल साइड का विषय है कि जो भी अपने परिणाम चल रहे हैं उसको देखते ही उसका रस टूट जाता है। ये मलिनता तोड़ने का रामबाण इलाज है कि जिसमें फेल्योर कभी नहीं है। परिणाम की जो मलिनता है उस मलिन परिणाम के रस में है, क्या है, उसकी शक्ति कहाँ है, ताकत क्या है, जोर कहाँ है, कि जितना परिणाम मलिन होता है उसमें जो रस होता है ना, वहां पूरी उसकी ताकत है। उस रस को तोड़े कैसे, मिटावे कैसे, कि जब ये दोष चालू हो गए उससे वक्त उस पर उसका अवलोकन करो, ये क्या हो रहा है, सीधा ही टूट जाएगा, उसी वक्त टूट जाएगा। हम दृष्टांत लेते इस विषय में, एक आदमी बहुत रस से खाना खाता है, कोई अच्छी चीज अपने जिसको अच्छी लगती है ऐसी अच्छी चीज हमारे खाने के वक्त कोई मिलती है, आती है थाली में, तो आदमी जी रस से खाएगा, वो तो उस वक्त कोई टेलीफोन आवे तो क्या होता है, हम कह देते हैं कि तो बोल दो खाना खा रहे हैं, बाद में टेलीफोन करें या हम कर लेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। क्या है, खाना खाने के रस में रस भंग हो गए ऐसी कोई बात बीच में नहीं होनी चाहिए। आजकल जो टेबल पर टेलीफोन लेकर बैठते हैं उसकी बात नहीं करता मैं, वो टेलीफोन की रस्सी टायर भी कुछ लंबा रख ले मैं, दो पांच मीटर का, उसको भी ये सब हमने कर चुके हैं हम लोग ये धंधा हम लोग भी कर चुके हैं कि खाना खाने वक्त तो टेलीफोन भी वहां चाहिए। फिर क्या होता है कि रस टेलीफोन में रहता है, खाना खाने में नहीं रहता है। जिसका रस टेलीफोन की बात में है या टेलीफोन में है, वो अपना रस का विषय वहां रखेगा, थाली सामने होते हुए भी रस थाली में नहीं है, रस टेलीफोन में है। हमारे महत्व के टेलीफोन इस वक्त आते हैं, बाजार खुलने का टाइम है, इसके पहले हमारा खाने खाने का टाइम रहता है, 11 बजे बाजार खुलती है, 12 बजे खुलती है, हम इसके पहले आधा घंटे पहले खाना खाते हैं, तो मोमेंट तो चालू हो ही जाती है बिफोर टाइम। तो हमारा रस अगर इसमें है तो खाना खाने में हमारा रस नहीं है, अगर खाना खाने में रस हो तो हम ये कहेंगे कि टेलीफोन को वहां रखो, तुम उठाओ जो भी है घर के आदमी या दूसरे लोग, बोल दो के बाद में बात करेंगे, अभी खाना खाते हैं। एक दूसरे का विक्षेपकारी है, क्या है, या तो खाने को रस को टेलीफोन विक्षेप करता है तो उसको दूर रखो, और टेलीफोन को बगल में रखो तो खाने का रस टूट जाएगा, दोनों रस साथ में रहने वाला नहीं है, विरुद्ध रस है। वैसे ज्ञान है, अब ये तो दृष्टांत है सिद्धांत को समझाने के लिए, और मलिन परिणाम है, दोनों का रस विरुद्धता है, एक में दूसरा विक्षेप करने वाला है, ज्ञान जानने का कार्य करता है। अब दोषित परिणाम चलता है उसी वक्त अगर उपयोग इस पर गया, विक्षेप हो जाएगा, उसमें रस टूट जाएगा। डेफिनेटली मलिन रस तोड़ने का या परिणाम की मलिन रस की जो परिणाम की मलिनता की ताकत जो है उसको तोड़ने का, ये एक रामबाण इलाज है। ये जो कृपालु देव ने ये बात बताया है, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी, कई जगह उन्होंने अपने पत्र में ये बात लिखी है। इस ग्रंथ का 254 नंबर का पत्र तो ऐसा है कि वो तो मुमुक्षुओं को कहां से स्टार्ट करना अपना काम और कैसे आगे बढ़ना सम्यक दर्शन तक, उसका बिल्कुल अनुक्रम से सब डायरेक्टिव लाइन बोरी दे दिया है, यहां से शुरू करो, इस तरह आगे बढ़ो क्रमशः, और उस तरह अब स्वरूप पदार्थ निर्णय तक पहुंचो, अनुभव हो जाएगा। ये पत्र तो बहुत बढ़िया है, 254 वाला, उसमें भी इसलिए इस बात का जिक्र कर, उसमें भी अपना दोष का अवलोकन करने के बाद है, अपना दोष देखना क्या होता है, क्यों ये बात कहा है कि होता है ऐसा कि जीव अपने परिणाम में कितना दोष करता है संख्या में और कितना बड़ा दोष करता है, एक एक दोष भी कितना बड़ा करता है और कितनी अशांति का और दुर्गति का कारण है उसका उसको पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि उसने कभी इस साइड में विचार करने या देखने का परिश्रम नहीं किया है, दरकार नहीं किया है। इसलिए अपने नुकसान के विषय में वो अनजान है। जिसको अपना नुकसान का पता नहीं है वो लाभ करने की दिशा में कैसे प्रगति कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, वो ही नहीं सकता। परिणाम एक व्यापार है। ये एक अच्छा विषय है कि व्यापारियों के लिए समझ में अच्छा आता है। सबसे बड़ा जो समझ में आता है वो व्यापारियों को और साइंटिस्टों को, दो जिसको जिस जो दो प्रकार का समझदारी है उसको ये विषय समझने में बहुत आसान पड़ता है। क्योंकि व्यापारी कम पढ़ा लिखा होता है लेकिन मतलब की बात को अच्छी तरह पकड़ सकता है, कितना भी कम पढ़ा लिखा हुआ। प्रयोजन को मतलब को समझ सकते हैं। तो एक तो इसमें भी यही काम है कि अपना मतलब प्रयोजन शांति अशांति से है तो इस विषय को हम अच्छी तरह समझ सकेंगे इस नजर से। दूसरी बात रही विज्ञान की, साइंस की। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि जो विज्ञान के दृष्टिकोण से इस विषय को समझेंगे उसकी समझ बहुत ठोस होगी। उसको कोई कितना भी तार्किक आदमी सामने से मिल जाए उसको अपने निर्णय में शिक्षित नहीं करा सकता, वो बदल नहीं सकते। क्योंकि उनकी समझ में अच्छा विज्ञान है कि ये ऐसे काम होता है। अपना दोष का अवलोकन करना, देखना और विचारना, उसमें अंतर है। अपना दोष का विचार भी हो सकता है और अपना दोष का अवलोकन भी, दो अलग अलग कार्य है। अवलोकन प्रत्यक्ष चीज का होता है, अवलोकन मैंने देखना। आप पुताना दोष नु जोवो, जोवो गुजराती अपना के। और विचार जो है वो परोक्ष चीज का होता है। देवचंद भाई हैदराबाद में हो तो एनो हूँ विचार करूँ, पर सामे बैठा हो तो मारा विचार शू करवा, तमे सामे बैठा। तो जो अपना दोष व्यतीत हो गए उस विषय में ज्ञान को जोड़ना वो विचार होता है। और जो चल रहा है, चालू है, चालू कंडीशन में जो है उस पर उपयोग को ले जाना, ज्ञान को ले जाना, वो देखना है। ठीक है, पर ज्ञान तो काम उस वक्त ले जाता है क्या? जब दोष चलता है ज्ञान दूसरा विचार में चलता है, क्या होता है?
ये गलती है।
विचार से उतना काम नहीं होता जितना अवलोकन से होता है दोष को मिटाने का। हमारा प्रयोजन दोष को मिटाने का है। दोष को इसलिए मिटाने का है कि दोष और दुख अशांति एक सिक्का की दो बाजू है। जहाँ दोष है वहाँ दुख और अशांति है, जहाँ निर्दोषता है पवित्रता है वहाँ वो एक सिक्का की दूसरी बाजू शांति और सुख है। तो दोष को मिटाने की बात है तो उसका रामबाण इलाज ये है कि उसी वक्त उसको पकड़ो, देखो मिटाने के दृष्टिकोण से देखो। उसी वक्त इसकी ताकत तो उसी वक्त टूटेगी, शक्तिहीन हो जाएगा ये दोष। और जो दोष हो गया हमारे से और बाद में हम उसका विचार करें तो वो दोष फिर से पैदा हो जाएगा, हमारा ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं रहेगा, फिर चालू हो जाएगा, हमको पता नहीं रहेगा। हाँ बस मंदता होगी, नहीं भी होगी, कोई भरोसा नहीं है इसका, क्योंकि ये इसका मिटाने का कोई सीधा उपाय नहीं है, ये सीधा उपाय नहीं है। दोष का देखना और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। अल्प आरंभ मैंने काम का वॉल्यूम जो है वो जितना हो सके उतना संक्षिप्त रखना, बड़ा नहीं करना, बढ़ाते नहीं जाना, हमें उसको कम करते जाना, इसलिए हमारे जो परिणाम हैं वो इतने ज़्यादा घूमे नहीं, विक्षेप नहीं बढ़े, मलिनता नहीं बढ़े। जिसको बहुत बड़ा आरंभ है उसके परिणाम वहाँ बहुत रस से लग जाएंगे, मलिनता बढ़ जाएगी, तीव्र रस से ये परिणाम हो जाएंगे। और परिग्रह में भी ऐसी बात है कि खास करके जितना परिग्रह बढ़ता जाता है साथ ही साथ अज्ञान के कारण उस परिग्रह के विषय में ममत्व रस भी बढ़ता जाता है, तीव्र हो जाता है। तो अपने जो ममत्व रस या मलिन रस जो तीव्र होता है उतनी अशांति बढ़ती है, इसलिए उसको भी मर्यादित कर देना है। इसलिए कि ज्यादा का तो ऐसे ही कोई उपयोग नहीं होता, एक जगह वो लिखते हैं कि ज्यादा का कोई इतना उपयोग नहीं होता, एक आदमी अपनी अधूरी पूंजी का भी उपभोग नहीं कर सकता, पूरी तो कोई करना नहीं करता ही नहीं, लेकिन अधूरी का भी कोई पूरा उपयोग नहीं कर सकता, तो इसका उतना उपयोग नहीं है। और नुकसान तो इसके लिए तीव्र रस होने से बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको भी सीमित कर देना। ये एक संसार गृहस्थ जीव के लिए बहुत वाइज स्टेप है कि अपने को सीमित करना है, अपनी आवश्यकता कितनी और अपने मर्यादा उसमें समय व्यतीत करने की कितनी, बस बाकी के समय हम हमारी शांति के लिए, हमारे आत्महित के लिए, हमारे आत्मकल्याण के लिए हमारा समय का हम खर्च करेंगे, हमारी शक्ति का वहाँ खर्च करेंगे, हमें को पूरी की पूरी शक्ति हमारे आरंभ परिग्रह में शक्ति और समय का खर्च नहीं करना है कि जिससे हमारा भविष्य बिगड़ जाए पूरा का पूरा। ये एक बहुत दीर्घ दृष्टि का विचार है। छोटी दृष्टि में वर्तमान अल्पकाल नजर में रहता है, 150 साल का आयु, अपना आयुष कितना इस जमाने में, इस युग में आयुष 150 साल का है और अनियमित है, कभी भी पूरा हो सकता है। कल सुना महेंद्र भाई का, देखिए 45 साल का अपने मुमुक्षु था मद्रास में, काफी रुचि वाला आदमी था वो, वीरेंद्र भाई का भाई, मैंने बिल्कुल सिमेट्रिक बॉडी, इतना तगड़ा भी नहीं इतना दुबला भी नहीं, खत्म। ये तो कितना अनियमित है, आयु का कब पूरा होना किसी को पता नहीं है, अनसर्टन है। मतलब हमें जो भी व्यवस्था, हमें 150 साल के विचारते हैं या तो हमारे लड़कों के या लड़के के लड़कों के, बस इससे ज़्यादा तो हमारी कोई नज़र आगे नहीं जाएगी। वो भी 100 साल में सब 20 साल जनरेशन पीरियड बताते हैं, 40 साल से ज़्यादा आगे हम 50 साल 100 साल से ज़्यादा सोच नहीं सकते। और हम रहने वाले हैं अनंत काल, अनंत काल के आगे 150 साल तो एक समुद्र का सिंधु के आगे एक बिंदु है, इतना छोटा काल है। हमारी दृष्टि अनंत काल के लिए होनी चाहिए विचार करने की, सिर्फ 150 साल के लिए हमें विचार नहीं करना है कि उसमें हमें अनुकूलता कितनी रहेगी, सुख कितना रहेगा, वो बात शॉर्ट साइटेड आदमी की होती है, लॉन्ग साइटेड आदमी की नहीं रहती। तो ये कहते हैं तो उसको ये मिटाने का साधन है। इतने जो परिणाम अगर हम अच्छी तरह संभाल सकें, सरलता, क्षमा, अपना दोष का देखना, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, ये मलिनता मिटने का साधन है। और ज्ञानी पुरुष की अत्यंत भक्ति, ये एक बहुत सुंदर बात क्या है, ज्ञानी पुरुष की अत्यंत भक्ति यह विक्षेप मिटने का साधन है। ये जो चंचलता है उसको आसानी से मिटाने का कोई प्रयोग है मुमुक्षु की भूमिका में। ज्ञानी होने के बाद तो उसके प्रयोग ध्यान के अलग अलग है, योग के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुमुक्षु की भूमिका में अगर सुगम से सुगम कोई उपाय हो तो ज्ञानी पुरुष की पहचान करना और उसके प्रति बहुमान होना, अत्यंत बहुमान होना। जैसे कोई एक डॉक्टर अगर कैंसर मिटा दे तो मिटता है समझो, तो हम उसको डॉक्टर के रूप में नहीं देखेंगे, भगवान के रूप में देखेंगे। हमारा कैंसर इसने मिटाया है 10 साल पहले, अभी तो 50 साल आराम से जीवन निकल जाएगा। तो ये तो अनंत जन्म मरण के मिटाने वाले डॉक्टर हैं, एक मरण का नहीं, अनंत जन्म मरण के मिटाने वाले डॉक्टर हैं। उसको सही पहचान कर होती है, इतना बहुमान आता है कि ये बहुमान ही खुद मुमुक्षु जीव के परिणाम को, चंचलता को मिटा देता है बहुत आसानी से। ये एक बहुत सुगम प्रयोग है, सुगम उपाय है, अच्छा उपाय है और बढ़िया उपाय है। इस पोस्ट कार्ड में उतनी बात लिखी है, परद्रव्य की भक्ति में स्वद्रव्य की भक्ति गर्भित है। क्या, जैसे एक गरीब आदमी है, अखबार पढ़ता है, अरे अमेरिका में ऐसा ऐसी बात है, अखबार में आता है, तो अमेरिकन लोगों की जो संपत्ति और वैभव है उसकी बात अपने रस से, अपना उत्साह से करता है वो। क्या अमेरिका की बात करता है, क्या अपनी रुचि की बात करता है, किसकी बात करता है वो? अपनी रुचि की वो बात करता है कि वहाँ तो मोटर ऐसे होती, मकान ऐसे होते हैं, अनुकूलता के साधन उतने उतने, ऑटोमाइजेशन इतना बढ़ गया है, ये है वो है। उसको चाहिए खुद को, परद्रव्य तो एक निमित्त है, रस तो अपना बढ़ता है। ज्ञानी पुरुष गुणवान पुरुष है, जिसने आत्मगुण व्यक्त किया है, प्रकट किया है, उसका गुणानुवाद में अपना गुण प्रकट होने का कारण बनता है उसमें रस लेने से। ज्ञानी पुरुष को क्या लेना देना है, वो तो निष्प्रभ होते हैं, उसको कोई स्प्रभ होती नहीं, होते हुए तो ज्ञानी नहीं होते, और ज्ञानी हुए तो स्प्रभ नहीं रहती। तो इसलिए भक्ति करने वाले को अपना मतलब है, ज्ञानी को तो मतलब है नहीं इसका, तो उसको इतना फायदा है कि उसका विक्षेप मिटता है, ये सबसे अच्छा फायदा है।
सेंट्रलाइज होते हैं विचार,
हाँ,
विक्षेप मिटते हैं, मतलब कि अपने देह के प्रति लग जाते हैं,
हाँ, लगते हैं अच्छी तरह। और डिस्टर्बेंस, इस विषय में जो डिस्टर्बेंस है जिस जिस प्रकार का, वो मिट जाता है। प्रमाद हो, कुछ भी हो, अनेक प्रकार के, जैसे आप घंटा पर बैठ जाइए, कई प्रकार के विचार आ जाएंगे, एकांत में घंटा पर बैठ जाएंगे, हजारों विचार आ जाएंगे, ये सब डिस्टर्बेंस अशांति पैदा करते हैं। तो वो विक्षेप मिटाने के लिए ज्ञानी पुरुष की भक्ति बहुत सुगम साधन है, सरल साधन है और सुलभता से वो प्राप्त है। भक्ति करने को कौन रोकता है, उसका गुण का पहचान करना, उस गुण के प्रति बहुमान करना है, जैसे कृपालु देव हैं, इनके प्रति हमारा बहुमान है। इनके पत्र पढ़ते पढ़ते बार बार हमें बहुमान आएगा, ओह कैसी बात बताइए, कैसी बात करते हैं, कैसे जानकार हैं, 25 साल की उम्र में इतना लिखा, अरे 15 साल की उम्र में ये जो 10 वचन लिखा है, स्वद्रव्य में त्वरा से जा, परद्रव्य को त्वरा से ये कर, 10 वचन लिए ना गुरुदेव ने, प्रवचन किया उस पर। कोई 15 साल की उम्र का लड़का हो, वो तो लड़का ही बोला जाता है, उसके वचन पर गुरुदेव जैसे महापुरुष प्रवचन करे और कहे कि ये खास प्रवचन है, मेरे रुचि के विषय के हैं, ये बात तो रिकॉर्ड ब्रेक है कहीं है। अभी हम 143 खास प्रवचन है उसका पुस्तक निकाल रहे हैं, उसमें ये प्रवचन है, ये सब्जेक्ट है अपना। मैंने इस उम्र में कुछ कितना विवेक था, कितनी विचार शक्ति थी, और परमार्थ के विषय में वो कितने एक्सपर्ट थे, शुरू से ही ये वचन बनाते हैं। अब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की भक्ति जो करने एक साधन बताया, तो उसका समागम तो मिलता नहीं, बार बार अंतराय रहता है, उस विषय में भी थोड़ी बात करते हैं कि ज्ञानी पुरुष के समागम का अंतराय रहता हो, यानी हम उसके समीप में नहीं रह सकते हो। जैसे कृपालु देव बंबई में रहते थे और ये जिसको पत्र लिखा है वो खंभात में थे, इनके प्रमुख सहचारी थे वो साइला में थे, सुभाग भाई, तो आपस में समागम में अंतराय था। उस प्रसंग में, अंतराय के प्रसंग में, बार बार यह ज्ञानी पुरुष की दशा, चेष्टा और उसको वचन का अवलोकन करना, गुजराती शब्द पड़ा है निरखना, निरखवा, वो हिंदी में भी निरखना तो होना चाहिए, मारवाड़ी में होना चाहिए, निरखो, गौर से देखो, जिसको कहते हैं हम क्या, गौर से देखो, उसको निरखना कहते हैं। और स्मरण में लेना और विचार में योग्य है, ये इनकी अनुपस्थिति में भी उतना तो हो ही सकता है कि बार बार इनकी दशा का विचार करें हम, इनकी चेष्टाएं कैसे कैसे होती है, कभी शांत होते हैं, कभी ध्यान में होते हैं, कभी उपदेश देते हैं, कभी किस रस में होते हैं, अनेक प्रकार के जो ज्ञान दशा में भी भिन्न भिन्न प्रकार की इनकी चेष्टा होती है, उसका अवलोकन करना, उसको भी निरखना और उसका वचन को भी निरखना, उसका स्मरण करना। और क्या है, जिसकी रुचि है, जिसके प्रति प्रेम है, उसका वियोग में क्या हालत होता है, यही हालत होती है। ये तो सभी को अनुभव गोचर है कि जिसके प्रति अनुराग होता है, प्रीति होती है, प्रेम होता है, उसका वियोग रहता है तो क्या होता है, क्या वियोग में प्रेम है वो मिट जाता है और द्वेष हो जाता है क्या, और बढ़ता है। प्रीति का यही रिवाज है, उसूल है कि वो संयोग में भी बढ़े और वियोग में भी बढ़े, ऐसा नहीं कि वियोग में घट जाए, वियोग में और बढ़ जाती है और फिर संयोग है तो और बढ़ जाती है, उसकी तारतम्यता बढ़ती ही रहना इसका स्वभाव है वो तो। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष के प्रति जिसको भक्ति है, प्रेम है, उसका वियोग रहता है, तो यही हालत स्वाभाविक तौर से रहती है या रहनी चाहिए, और उसका स्मरण करना, उसका विचार करना योग्य है, यही योग्य है, मैंने यही स्वाभाविक है। और उसके समागम में, समागम के अंतराय में दूसरी सांसारिक प्रवृत्ति के प्रसंग में, देखियो निवृत्ति के प्रसंग में तो आप स्मरण करेंगे क्योंकि आपको प्रेम है, लेकिन दुकान पर चले गए तब क्या, बाजार में गए तब क्या, मुमुक्षु को क्या कहना कि अत्यंत सावधान रहना चाहिए, थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। जब हम कहीं भी डेंजर जोन में प्रवेश करते हैं तो कितने अलर्ट होते हैं। जैसे हम हिल स्टेशन जाते हैं, गाड़ी चढ़ती है उतरती है, स्टीयरिंग हाथ में होवे तो कितना सावधान रहना पड़े। ट्रैफिक, और उसमें ट्रैफिक हो और उसमें बारिश हो, बरसात हो, बदले हो, बादल आ जाते हैं, जैसे दार्जिलिंग जाते हैं तो आ जाते हैं ना बादल, बीच फॉग लाइट रखनी पड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि जितना डेंजर पॉइंट है उतनी अलर्टनेस आ जाती है, सावधान हो जाता है आदमी, ये डेंजर जोन में आ गया। क्या दूसरे प्रसंग में आते ही एक डेंजर जोन में आए तो वहां और सावधान रह जाना कि हमारा रस कहीं तीव्र तो नहीं हो जाता इधर आने के बाद। बहुत प्रकार के डायरेक्टिव्स मनुष्यों के लिए, तो बचाने के लिए इतने बातें पत्रों में आई है कि अगर ध्यान से इसका अध्ययन करे तो उसको पारमार्थिक लाभ हुए बिना नहीं रहेगा, ऐसी एक चीज है। चर्चा करेंगे तो फिर अभी तो थोड़ा टाइम और बड़ी टाइम हो गया है।